नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा भी की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव कल से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर भी बल दिया गया है। दोनों देशों ने कहा इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। भारतीय नौसेना निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार की सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये 6ठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरलम में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरु ओणम मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने ईद ए मिलादुन नबी और ओणम की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानानंद ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेल रहा है। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।